नमस्कार साथियों, मैं संतोष कुमार खरवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिंदी में 11वीं कक्षा के लिए आज का पाठ है कबीर। भक्ति काल के अग्रदूत निर्गुण संत महात्मा कबीर हिंदी साहित्य की श्रेष्ठतम विभूति हैं। कबीर ज्ञानमार्गी शाखा के प्रमुख एवं प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। कहा जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। उसने लोक लाजवश इन्हें लहरतारा नामक तालाब के निकट छोड़ दिया। वहीं से नीमा नामक जुलाहा ने इन्हें उठाकर इनका पालन पोषण किया। कबीर ने भी जुलाहे का व्यवसाय अपनाया। कबीर स्वामी रामानंद के शिष्य थे। वे पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने अपने अनुभव से ही जीवन जगत का ज्ञान प्राप्त किया। 1518 ईस्वी में इनका देहांत मगहर में हो गया। कबीर जी के नाम से एक पंथ चला जो कबीर पंथ कहलाया। कबीर की वाणियों का संकलन बीजक नामक ग्रंथ में पाया जाता है। कबीर के शिष्यों ने इसका संकलन किया। बीजक के तीन अंश हैं, साखियां, सबद और रमैनी। बीजक मुक्तक काव्य है। गेय पदों को सबद कहा गया है। रमैनी में पद शैली के सिद्धांतों का विवेचन है। कबीरदास उच्च कोटि के साधक, संत और विचारक थे। भारतीय समाज में व्याप्त जाति पाति, अंधविश्वास, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, धार्मिक संकीर्णता और कट्टरवाद का उन्होंने डटकर विरोध किया। जाति पांति का विरोध करते हुए उन्होंने कहा, जात पांत पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। कबीर युग संधि पर पैदा हुए थे। उस समय समाज पर हट पंथियों तथा नाग पंथियों का बड़ा प्रभाव था। कबीर ने निडरता का परिचय देते हुए हिंदुओं एवं मुसलमानों का ढोंग आडंबरों के लिए फटकारा। कबीर ने सहज भाषा को अपनाया है। उनकी भाषा मिश्रित है। इनकी भाषा को सधुक्करी या पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा जाता है। इसमें अरबी, फारसी, ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, पंजाबी, भोजपुरी आदि शब्दों की बहुलता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनकी भाषा के संबंध में लिखा है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है उसे उसी रूप में कहलवा दिया है। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। कबीर ने कहीं भी अपने काव्यों में अलंकारों का मुलम्मा चढ़ाने की कोशिश नहीं की। उनके काव्य में अलंकार स्वाभाविक रूप में आ गए हैं। इनमें प्रमुख है रूपक, उपमा, अन्योक्ति, यमक, वक्रोक्ति आदि अलंकार। उन्होंने पद योजना में विभिन्न राग रागिनियों का ध्यान रखा है, जिसमें उनमें गेयता का गुण आ गया है। कबीर का काव्य मुक्तक शैली में रचा गया है। कबीर दास की अधिकांश साखियों एवं पदों में शांत रस का प्रयोग है। उनकी उलटवासियों में अद्भुत रस है। शेष पदों में भक्ति विषयक श्रृंगार रस प्रधान है। कबीर दास एक प्रसिद्ध समाज सुधारक रहे हैं। पाठ में दिए गए पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कणकण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। तो भक्ति के संबंध में उनके विचारों को जानते हैं। कबीर दास उस समय के संत हैं जिस समय धर्म के नाम पर अनेक तरह के मतवाद प्रचलित थे। सगुण निर्गुण के भीतर भी अनेक पंथ प्रचलित थे। महान समन्वयवादी तुलसी भी कहना नहीं भूले कि तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण लियो हाथ। यह कृष्ण के लिए कही गई उक्ति है, जबकि हम जानते हैं कि कृष्ण चक्रधारी हैं। तुलसी को चक्रधारी कृष्ण नहीं धनुषधारी कृष्ण चाहिए। कबीर ने उन सभी मतवादों से सर्वथा अलग सहज मार्ग चलाया। इनके सहजिया मार्ग में किसी तरह की औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। उनके भक्ति मार्ग के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि कबीर ने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया है। कबीर दास की भक्ति भक्ति भावना निर्गुणवादी है। इस निर्गुण पंथ का प्रवर्तन उन्होंने ही किया था। इसके लिए नाम स्मरण और सहज मार्ग का निर्देशन देकर अपनी भक्ति को आम लोगों के लिए सरल बना दिया। कबीर दास एक ज्ञानी चिंतक हैं। उन्होंने जीवात्मा, परमात्मा और माया तथा जगत के विषय में अपना स्वतंत्र मत स्थापित किया है। जीवात्मा के संबंध में उनकी स्पष्ट धारणा है कि जीवात्मा परमात्मा का एक अंश है। यह उसी ब्रह्म से अलग होकर सांसारिक रूप धारण करती है। सांसारिकता के प्रभाव से जीवात्मा का ब्रह्मत्व ओझल हो जाता है। इस जीव को जब ज्ञान की आंखें खुलती है तब उसे संपूर्ण जगत ब्रह्ममय दिखाई पड़ता है। उनका मानना है कि संपूर्ण चराचर में वही ब्रह्म विराजमान है। सब जगह उसी की छवि दिखाई पड़ती है। उसी ब्रह्म की खोज करते करते जीव भी ब्रह्ममय हो जाता है। लाली मेरे लाल की जित देखो तितलाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। मैं भी हो गई लाल अर्थात जीवात्मा का उस ब्रह्म के साथ मेल हो गया। यह मेल एकीकृत रूप है, ठीक उसी तरह जिस तरह बुंद और समुद्र का मेल होता। हेरत हेरत हे सखी गया कबीरा हिराए, बुंद समाना समुद्र में सो कित हेरी जाए। कबीर ने जीवात्मा और परमात्मा के बीच माया को उपस्थित किया है। उनका मानना है कि माया के कारण ही जीव सांसारिक बना रहता है। सांसारिकता का बंधन माया के कारण है। यही माया सतो रजो और तमो तीनों गुणों को बांधती है। इसलिए कबीर ने माया को महाठगनी कहा है। कबीर के शब्दों में माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी परंत कोई एक गुरु ज्ञान ते उबरे साधु संत। अर्थात माया तभी दूर होती है जब गुरु का ज्ञान प्राप्त होता है। कबीर दास ज्ञानाश्री शाखा के प्रवर्तक हैं। उनका मार्ग ज्ञान मार्ग है। ज्ञान के बिना जीव सांसारिकता को ही सब कुछ समझता है। सब जीव को गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, तब उसका ज्ञान चक्षु खुलता है। फिर तो वह माया और जगत के भाव बंधन को समझ जाता है। उसके सामने कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता है। कबीर दास ने जगत को नाशवान बताया है। उन्होंने संसार की नश्वरता को कई तरह से व्यक्त किया है। उनके अनुसार यह जगत कागज की नाव की तरह है, जिस पर बूंद पड़ने से उसकी सत्ता समाप्त हो जाएगी। इसी तरह यह झार झंखार है जो आग लगने से जल जाएगा। एक सत्य ही बचा रहेगा, वही परम सत्य अर्थात ब्रह्म अनश्वर है। कबीर जगत ब्रह्म दोनों को दो पृथक अस्तित्व नहीं मानते, वे एक ही परम तत्व को मानते हैं। उनके अनुसार इस नानाविध संसार का रचयिता एक परमात्मा है। संसार के समस्त रूपों में उसी एक की सत्ता विद्यमान है। इस भाव को व्यक्त करते हुए वे कहते हैं कि हम तौ एक एक करी जाना, दोई कहे तिन ही को दो जग जिन नाहिन पहचाना। अर्थात हम तो उस परमात्मा को एक और केवल एक ही मानते हैं। जो लोग उस परम तत्व को आत्मा परमात्मा जीव ब्रह्म आदि दो अलग अलग अस्तित्व मानते हैं, उन्होंने वास्तव में उस परमात्मा को जाना ही नहीं है। उनके लिए संसार नरक है। अज्ञानवश वे एक को दो मान बैठे हैं। एक है पवन, एक ही पानी, एक है ज्योति समाना, एक है खाक गढ़े सब भाड़े, एक है कोहरा साना। अर्थात पूरी सृष्टि में पवन एक है, जल एक है, और उसी एक ही परमात्मा की ज्योति समस्त संसार में व्याप्त है। इस संसार का रचयिता भी एक है। सभी का निर्माण एक ही मिट्टी से हुआ है तथा उन्हें एक ही कुम्हार ने बनाया है। अर्थात सभी मानवों का निर्माण जल, नभ, अग्नि आदि पांच तत्वों से हुआ है तथा उनका निर्माता भी एक है। जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरि तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। जैसे बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है किंतु उसमें निहित अग्नि को नहीं काट सकता, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर नश्वर है किंतु उसमें निहित आत्मा अमर और अकाट्य है। हे परमात्मा, सभी प्राणियों में तू ही व्याप्त है, तूने ही विभिन्न रूप स्वरूप धारण किए हुए है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरवाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीर दास कहते हैं कि हे मनुष्य, संसार के मायामय रूप को देखकर यह सारा संसार लुब्ध हो गया है। भला तू इस झूठी माया पर क्यों गर्व करता है? प्रभु प्रेम में दीवाने कबीर कहते हैं, जो लोग माया मोह से मुक्त हो जाते हैं वे निर्भय रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं व्याप्ता। अब फिर से थोड़ा समझ ले कि कबीर संसार में किस एक को मानते हैं तथा परमात्मा की एकता किस प्रकार सिद्ध करते हैं। कबीर संसार में निराकार ब्रह्म अर्थात ईश्वर को मानते हैं। कबीर ने परमात्मा की एकता प्रमाणित करने के लिए पवन, जल, ज्योति, मिट्टी आदि सभी को परमात्मा की देन कहा है। उनके अनुसार जैसे बर्तन भिन्न होने पर भी उनकी मिट्टी एक होती है, उसी प्रकार भिन्नता में समाया हुआ परमात्मा भी एक है। संसार नश्वर है और आत्मा अमर है। इस संबंध में कबीर दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार लकड़ी को काटा जा सकता है किंतु उसके भीतर स्थित अग्नि अकाट्य और अमर होती है, उसी प्रकार संसार नश्वर होते हुए भी आत्मा अमर होती है। कबीर लोगों को अज्ञान, माया, अहंकार आदि दोषों से बचने की चेतावनी देते हैं। अब अर्थ और पद की विशेष बातों को जान लें। यहाँ एक एक शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। एक का अर्थ है परमात्मा और दूसरे एक का अर्थ है संख्या। यहाँ एक एक के अलग अलग अर्थ होने के कारण यमक अलंकार का सौंदर्य है। दोजक का अर्थ है नरक। इसी प्रकार खाक का अर्थ है मिट्टी। भाड़े बर्तन को कहते हैं। कोहड़ा का अर्थ होता है कुम्हार। बाढ़ई, बाढ़ी मतलब बढ़ई। काष्ट का अर्थ है लकड़ी। कबीर की वाणी में प्रखर आत्मविश्वास है। वे अपनी बात को पूरे आत्मविश्वास से कहते हैं। ब्रह्म की एकता और उसी से जगत के सृजन का विचार सबलता से व्यक्त हुआ है। माया मोह और गर्व की व्यर्थता पर प्रकाश डाला गया है। संतों की अखड़ता, फक्कड़ता और निर्भीकता का प्रमाण इस पंक्ति में मिलता है। दोई कहे तिन्ही को दोजग जिन नाहिन पहचाना। जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे अग्नि न काटे कोई में उदाहरण अलंकार है। बढ़ई लकड़ी और आग का उदाहरण अत्यंत प्रभावी और सटीक बन पड़ा है। खाक और कोहरा में रूप का तीशयोक्ति अलंकार है। खाक पंच तत्वों के लिए तथा कोहरा ईश्वर के लिए आया है। अनुप्रास की छटा अनेक जगह दर्शनीय है। यह पद पूरी तरह गेय और संगीतात्मक है। संबोधन शैली के कारण इसमें संजीवता आ गई है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।